कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वो पंडित कहलाता है। हे भरतकल भूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं, भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते, जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वो पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार, वो पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बात करता है, तर्क में निपुण है, प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथों के तात्पर्य को शीघ्र समझ सकता है, वो पंडित होता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण कर जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वो पंडित पदवी प्राप्त करता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनसूबे बांधने वाले और बिना काम के ही धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य मूर्ख कहलाते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा अपने मित्र के साथ असत आचरण करता है, वो मूर्ख होता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है, तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहा जाता है। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करता है और उस मित्र को कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कार्यों का आरंभ करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता फिरता रहता है, शीघ्र होने वाले काम में देरी लगाता है, वो मूर्ख है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला जाता है, मकान के अंदर चला जाता है बिना बुलाए। मूढ़ पुरुष बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा अविश्वसनीय पुरुषों पर विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोष युक्त होने पर भी जो दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख होता है। कर तो कहीं सके को नहीं, रीसा बढ़तो रहे वे। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता है, जो शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। शून्य की उपासना क्या होती है? लोग देखते हैं निर्गुण निराकार की उपासना ही शून्य को, ये नहीं है। शून्य की उपासना है कि जिस उपासना से कल्याण नहीं मिलता, सकाम उपासना की बात। और जो आन देवताओं की पूजा करते, अशास्त्रीय देवताओं की पूजा करते हैं, वो शून्य उपासना होती है। जो बहुत धन विद्या और ऐश्वर्य को पाकर इठलाता नहीं, वो पंडित होता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है, अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर संसार में कौन क्रूर हो सकता है? मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से दो का निश्चय करके चार से तीन शत्रुओं को वश में कीजिए। एक बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करके साम दाम दंड भेद इन चारों से तीन शत्रु माने काम क्रोध और लोभ इनको वश में कीजिए। पांच इंद्रियों को जीतकर छह गुणों को जानकर माने संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप ये राजाओं में होते हैं। कब संधि करें, कब लड़ाई करें, कब आक्रमण करें, कब चुपचाप बैठे रहें, कब दो को दो में आपस में लड़ा दें और कब हम किसकी शरण में चले जाएं। और सात का त्याग परस्त्री जुआ मृगया मद्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन इन सात को छोड़कर सुखी हो जाइए। विषय का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ राजा का भी विनाश करता है। कोई भी मंत्र कोई भी विचार है वो गुप्त रहना चाहिए, फूट जाने से सबका विनाश होता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला किसी रास्ते पर न चले। बहुत से लोग सोए हो तो उनमें अकेला न जागे, ये नीति है। राजन जैसे समुद्र के पार हो जाने के लिए नाव एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, दूसरा कोई नहीं है, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं, वो यही है कि क्षमाशील पुरुष को लोग असमर्थ कहते हैं बस। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं होता है, क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण होता है, समर्थों का भूषण होता है। इस जगत में क्षमा वशीकरण मंत्र है, भला क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है, जहां तिनका वगैरह नहीं हो और आग पड़ जाए तो वहां वो आग अपने आप शांत हो जाएगी। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बनाता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक एक है और एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी शत्रुओं से विरोध न करने वाले राजा तथा परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाया करती है। जरा भी कठोर नहीं बोलना, दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य श्लोक में शोभा को प्राप्त होता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान होते हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, एक तो अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी, इन दो की शोभा नहीं होती। मैं साधु हां जो बस हरदम प्रपंच में लागे डारे वहां अब माखे शोभा नहीं देवे, और गृहस्थ है जो बैठे रहे न कमावे न कोई खावे, न कमावे नहीं बैठे रही। ये दोनों दो ही विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं देते। ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला, ये दो स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त करते हैं। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर किसी सरोवर में डूब जाना चाहिए। किनको? कि जो धनी होने पर दान नहीं दे और दरिद्री होने पर कष्ट सहन न करे, इन दोनों मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर किसी बड़े सरोवर में डूबकर मर जाना चाहिए। ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्वगति को जाते हैं। कौन? योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम, ये तीनों प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, एक तो स्त्री, एक पुत्र, एक दास, ये तीन धन के अधिकारी नहीं माने जाते। ये जो कुछ कमाते हैं वो धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। स्त्री के पास पैसा कहां से आता है? या तो पति के द्वारा आता है, पुत्र कमाता है तो पुत्र के द्वारा आता है, तो स्त्री धन का अधिकारी नहीं होती। पुत्र के पास धन कहां से आता है? पिता के पास से आता है, तो उस धन का वो पुत्र अधिकारी नहीं होता। और दास, सेवक, नौकर, नौकर के पास कहां आता है? स्वामी से आता है। ये जो कमाते हैं वो धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भरत, भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना, ये एक तरफ, ये बराबर है, बराबर है। ये क्या क्या? एक तो वरदान पाने पर कितनी खुशी होती है, एक राज्य की प्राप्ति होती तो कितनी खुशी होती है, एक बेटे का जन्म होता है तो कितना आनंद का अनुभव होता है। कहते हैं ये तीनों एक तरफ रखो और शत्रु के कष्ट से छूट जाए ये दूसरी तरफ, ये सुख ज्यादा होता है। तीन सुख मिलकर के भी इतना सुख नहीं देते जितने शत्रु के कष्ट से छूटने का सुख मिलता है। भक्त, सेवक तथा मैं, भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं, ऐसा कहने वाले तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य माने गए हैं। एक तो थोड़ी बुद्धि वाला हो, एक दीर्घ सूत्री हो, एक जल्दी जल्दी बाज और एक हमारा गुणगान गाए, इनसे गुप्त बात नहीं करनी चाहिए, गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए, अच्छी सलाह नहीं मिलेगी। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान, आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। एक तो अब चार प्रकार के अपने घर में रहने चाहिए आदमी। कौन? अपने कुटुंब का बूढ़ा आदमी, एक संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, एक धनहीन मित्र और एक बिना संतान की बहन। कहते हैं ये चार होते हैं, इन चारों अपने घर में इन चारों को रखना चाहिए। महाराज इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया है वो भी मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश, ये चार चीजें उन चारों के सेवन से मिलती है। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय को पैदा करने वाले भी हैं। क्या? आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ आदि का तो काई है, अब ठीक है करना है, ऐसा नहीं। आदर पूर्वक मौन, आदर पूर्वक अग्निहोत्र, आदर पूर्वक स्वाध्याय, गीता रामायण भागवत आदि जो भी, इसका आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। पिता की सामने नहीं बोले, माता से कभी चित्त न दुखाए, अग्नि, आत्मा और गुरु, इनका सेवन करना चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले और आश्रय पाने वाले पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। मशक हुआ पखाल होती पहले, जरा सो भी छेद हो जाए तो सारो पानी निकल जाए। ऐसे ही पांच इंद्रियां हैं, इन एक इंद्रिय में भी यदि दोष चालू हो गया तो ये बुद्धि का ज्ञान सब खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये जल्दी ही नरक में ले जाने वाली होती है। दीर्घ सूत्रता माने थोड़े से समय में होने वाले काम को बहुत समय तक पूरा करना। इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा और कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छह को भलीभांति छोड़ देना चाहिए। अरे आते ही आ बात आई है। जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का त्याग करता है, ऐसे इनका त्याग कर देना चाहिए। किसको? एक तो ऐसा आचार्य जो उपदेश न दे। उपदेश देना चाहिए, उपदेश अपने ऊपर लागू होता है, लोगों पर लागू होता है, उपदेश से सबको शांति मिलती है। तो आचार्य होकर उपदेश न देवे, ऐसे आचार्य को त्याग दो। मंत्रोच्चारण नहीं करने वाला जो होता है माने ये अग्नि में हवन करने वाले ब्राह्मण, फिर मंत्र का उच्चारण नहीं करने का ही फायदा। रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ध्यान रख जो आपके घर में मीठा वचन बोल जो, और गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले। अरे ग्वाले का काम तो जंगल में जाने का है, तो ग्वाला क्या है? मैं तो गांव में ही रहा कि भैया जाना जाओ। और वन में रहने की इच्छा रखने वाला नाई, और जंगल में जाकर कहेंगे लटके तो स्वार तो बनाई खाएंगे नहीं। इन छह को उसी भांति छोड़ देना चाहिए जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देते हैं। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनुसूया माने गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा, धैर्य, इन छह गुणों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें सुख देने वाली होती हैं। इसलिए स्त्रियों से लड़ना भी नहीं चाहिए, पुरुषों को ही चाहिए। स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना चाहिए और स्त्री भी प्रियवादिनी होनी चाहिए। मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सरी, इनको वश में करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष पापों से लिप्त नहीं होता है, फिर उससे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या, अनर्थ लगते ही नहीं। निम्नांकित छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपनी आजीविका चलाते हैं, सातवें की उपलब्धि नहीं होती। किससे? चोर होते हैं वो असावधान पुरुष से अपनी आजीविका चलाते हैं, वैद्य होते हैं वो रोगी से अपनी आजीविका चलाते हैं, पुरोहित होते हैं वो यजमानों से काम चलाते हैं, राजा होते हैं वो झगड़ने वालों से अपनी आजीविका चलाते हैं, और विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी आजीविका चलाते हैं। एक और कहिए जो मैं सभा में नहीं कहूंगा। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये छह चीजें नष्ट हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा संभालते रहना चाहिए गाय को, सेवा भाव को, खेती को, स्त्री को, विद्या को, शूद्रों से मेल संभालते रहना चाहिए। ये छह सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। कौन कौन? एक तो शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का अनादर करते हैं, ध्यान देना। विवाह हो जाने के बाद बेटा माता का अनादर करते हैं। कृतकार्य पुरुष सहायक का, माने आपने मेरा कोई काम सिद्ध कर दिया उसके बाद मैं आपका कोई परवाह नहीं करूंगा। नदी की दुर्गम धारा पार करने वाला पुरुष नाव का फिर कोई महत्व नहीं है। अब ऋषिकेश 3:1 गीता भवन से नौका में बैठकर यहां आ गए, अब नौका का कोई मतलब नहीं, आगे आगे फिर चले, नौका की तरफ देखते ही नहीं। तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। पूछे को नहीं वैद्य जी ने। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप करना, अपनी वृत्ति से आजीविका चलाना, सर्वथा निर्भय होकर रहना, ये छह मनुष्य लोक के महान सुख है। एक तो निरोग रहो, किसी का ऋण मत ले हो, परदेश में मत रहो, अपने देश में रहो। सेठा सुन लीजिए, हो कलकत्ते भागवत है। और अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप रहना, अपनी वृत्ति से जीव का चलाना और निडर रहना, ये छह मनुष्य लोक के महान सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये सदा दुखी दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मदिरा पीना, वचन की कठोरता और अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये सात दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देना चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के आठ पूर्व चिन्ह हैं। पहला, वो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मण का धन हड़पता है, फिर उसको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मनाता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ याग आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। ये आठ मनुष्य के विनाश के पहले चिन्ह हैं। ऐसा आठ में से कोई चीज आ गई तो बस अब गया गत्ते से। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। हे धृतराष्ट्र, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये आठ हर्ष के सार दिखाई देते हैं और यही अपने लौकिक सुख के साधन भी हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक नहीं बोलना, शक्ति के अनुसार दान और दूसरे के किए हुए उपकार को याद रखना, कृतज्ञता, ये आठ गुण पुरुष की ख्याति बढ़ाने वाले होते हैं। जो पुरुष आंख, कान आदि नौ दरवाजे वाले, तीन वात पित्त कफ रूपी खंभों वाले, पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को जानता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, दस प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते हैं, नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये दस धर्म के तत्व को नहीं जानते। अतः इन सब लोगों में बुद्धिमान विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ाए। इसी विषय में असुरों के राजा प्रह्लाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति दौड़ी दौड़ी आकर आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर अपना पराक्रम दिखाता है, वो धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित हो ही जाते हैं। जो निरर्थक विदेश में रहता है, पापियों से मेल करता है, परस्त्री गमन करता है, पाखंड करता है, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, जो निरर्थक विदेशवास में रहता है, पापियों से मेल, परस्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान ये काम नहीं करता है, वो सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़ चढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, उस मनुष्य की सब जगह प्रशंसा होती है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींग नहीं मारता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत ही बैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता भी नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूं क्या करूं, विपत्ति में तो मुझे ऐसा कर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा विचार कर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कितनी भी विपत्ति हो जाए, नहीं करने योग्य काम तो नहीं करें, नहीं करना है। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुख के समय हर्ष नहीं मानता, दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वो सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा रखता है, उसे उत्तम अधम का विवेक रहता है। वह जहां जाता है सब मनुष्यों पर उसकी प्रभुता स्थापित हो जाती है। जो मनुष्य दंभ, मोह, मात्सरी, पापकर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से बैर, मतवाले, पागल और दुर्जनों से विवाद छेड़ देता है, वो श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह करता है, मित्रता करता है, व्यवहार करता है, उनके साथ बैठकर बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं बैठता, गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति बड़ी श्रेष्ठ होती है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़कर भाग जाते हैं, कोई अनर्थ आता ही नहीं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों के इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने का कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर है, सत्यवादी है, कोमल है, दूसरों को आदर देने वाले हैं तथा पवित्र विचार वाले हैं, वह अच्छी खान से निकले और चमके हुए श्रेष्ठ रत्न के भांति अपने जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। रामाराम। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। अंबिका नंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो पांच पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे पांच इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला है, शिक्षा दी है, वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। हेतात, उन्हें उनका न्यायोचित राजभाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद में रहिए। हे नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता और मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय से बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। मैं चिंता से जल रहा हूं, अभी तक जाग रहा हूं, तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ। तुम्हारे वचन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में बड़े निपुण हो। तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश दो। हे विदुर, जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो उस बात को तुम खुलकर के बताओ। हे विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, हरदम चित्त व्याकुल रह रहा है। संजय ने जब से कहा है मेरे मन में एक ही घबराहट है कि अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं। अजात शत्रु माने जिसने कभी किसी को शत्रु समझा ही नहीं, जिसके लिए शत्रु जन्मा ही नहीं, जिसकी दृष्टि में वो युधिष्ठिर क्या चाहते हैं। तुम भी कुछ ठीक ठीक अनुमान करके बताओ विदुर, आखिर युधिष्ठिर क्या चाहते हैं। विदुर जी ने कहा मनुष्य को चाहिए कि वो जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित होगा वो बात कहूंगा। मैं जो कल्याणकारी और धर्मयुक्त वचन कह रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे भारत, असत उपायों का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया हुआ कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए। हमने तो अच्छा किया और आगे कार्य सिद्ध नहीं हुई तो कोई परवाह नहीं। किसी प्रयोजन से किए हुए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए, जल्दीबाजी में किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, उसका परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता है। न तो उसको खजाने का ज्ञान है, न उसको अपनी सेना के बल का ज्ञान है, न लाभ का न हानि का। और ऐसे हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा करने वाला राज्य स्थिर नहीं कर सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है, धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो क्या है, राज्य प्राप्त हो ही गया है, कौन क्या कहने वाला है, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर स्वरूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। मछलियां बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती हैं, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपने उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पचने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फल को तोड़ता है वे उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश कर दिया और उस फल को यदि खाया तो खुद का ही नुकसान हो गया। ये बुद्धिमानी नहीं होती। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वो फल से रस प्राप्त करता है, उस बीज से पुनः फल प्राप्त कर सकता है। जैसे भौंरा फूलों की रक्षा करता हुआ उसके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा कर उनसे कर लेवे। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से मेरा क्या लाभ होगा या न करने से मेरी क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य कर्म करे या न करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कर्म होते हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जिनका मूल छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कर्मों में विघ्न भी नहीं आते। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो प्रजा उससे प्रेम रखती है। राजा वृक्ष के भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे तो क्या फायदा हुआ? यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जाए, ऐसे पहुंच के बाहर रहे तो क्या फायदा? कच्चा होने पर पके की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वो नष्ट नहीं होता है। जैसे आम है कच्चा रहता है, कच्चे वो ये पूरा प्रकट होता है तो कितना लाभ देता है। ऐसे ही कोई काम करे तो वो पक जाए तब प्रकट करे। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हिरण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे सारे प्राणी डरते हैं वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर के भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस तरह नष्ट कर देता है जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े के भांति संकुचित जाती है। जो दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे, धर्म से उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक जो राज लक्ष्मी है उसको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है न वो राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले, पागल, बकवाद करने वाले, बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करना चाहिए जैसे पत्थर में से सोना लिया जाता है। छोटा बच्चा है उससे भी कई बातें सीख सकते हैं, जो कि निरर्थक बोलता है, पागल जैसा है, बकवाद करने वाला है, पर उससे भी कई तत्व की बातें निकलती हैं जैसे पत्थर में से सोना होता है। जैसे उच्च वृत्ति से जीव का चलाने वाला एक एक दाना चुकता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहां तहां से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करना चाहिए। महाराज जी कहा करते, गावो गंधेन पश्यंती, वो लिखा है, गौवें गंध से देखती हैं, वेद लोग, ब्राह्मण लोग वेदों से देखते हैं, राजा गुप्तचरों से देखते हैं और सर्वसाधारण आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाया जाता। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के बंधु हैं पति, बंधु का अर्थ रक्षक, और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित रहती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है, सदाचार से कुल की रक्षा होती है, तोलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मेले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल ही मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ होता है। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम कुलीनता सुख सौभाग्य और सम्मान पर ईर्ष्या करता है उसका रोग असाध्य है। जो लोग दूसरों के सुख में ही दुखी होते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। दूसरे तो दूसरे ही हैं, कोई सुखी भी रहेगा ही, पर दूसरों के सुख में जो दुखी होते हैं वे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्धि होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरे ऊंचे कुल का मद, ये घमंडी पुरुष का बहुत जल्दी सत्यानाश करते हैं। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं दे सकते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, जिसके पास गऊ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है, सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, और शीलवान पुरुष सबको जीत लेता है। गाय का दूध पिए ना, ज्यादा मिठाई चीटे की चटोरापन नहीं आएगा। गाय के दूध की विशेषता है। अच्छा कपड़ा पहनता है तो सभा को जीतता है, अर्थात सब पर प्रभाव पड़ता है कि बड़े कुलीन है। पर जो शीलवान पुरुष होते हैं वो सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है इस संसार में उसका जीवन धन और भाई बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। हे भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है, और वो धनियों के लिए तो कभी सुलभ है नहीं। सेठा नहीं थी भूख लागे गोनी जीती, गरीब आने लागे। संसार में धनियों को प्राय भोजन करने की शक्ति नहीं होती, और दरिद्र लोग हैं वो पेट में काठ को भी पचा लेते हैं। लिखियोड़े ही बोला भाई, अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय लगता है, किंतु उत्तम पुरुष को अपने अपमान में भय दिखता है। क्या बातें हैं। यह तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा बहुत बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मत से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में आ ही नहीं सकता। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों को वश में रखने वाली सहज पांच इंद्रियों को जीत लिया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति, जो जीवों को वश में करने वाली सहज पांच इंद्रियों से जीत लिया गया, अर्थात इंद्रियों ने जिसको जीत लिया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति बढ़ती हैं। इसलिए इंद्रियों को जीतना चाहिए, इंद्रियों से पराजित नहीं होना चाहिए। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग छोड़ देते हैं। पहले अपने मन और इंद्रियों को शत्रु समझकर जीतो, उसके बाद बैठ करके दूसरे शत्रुओं की जीतने की इच्छा करता है उसको सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। ये तो बहुत बार सुनते हैं, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर मनुष्य घोड़ों से सुखपूर्वक यात्रा कर सकता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार गिराते हैं, वैसे ही इंद्रियां वश में न होने पर मनुष्य को मार डालने में समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान लेता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से हाथ धो बैठता है। जो खूब धन प्राप्त करने पर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन बुद्धि इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपनी आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। गीता जी का श्लोक, जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया उसका आत्मा उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु भी है। जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती है, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं, इसलिए इन दोनों से बहुत बचे रहना चाहिए। जो इस जगत में अर्थ तथा धर्म का विचार कर विजय की साधन सामग्री संग्रह करता है, वही उस सामग्री से सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता है। जो चित्त के विकारभूत पांच इंद्रिय रूपी भीतर शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु हरा देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलास से बन जाते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जलने लगती है, इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों के संग से सज्जनों को भी कष्ट मिलता है, तो दुष्ट पुरुषों का साथ कभी न करें। जो पांच विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने पांच इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति से कोई नहीं बचा सकता। गुणों में दोष न देखना, सदा सरलता का व्यवहार करना, पवित्रता में रहना, संतोष प्रिय वचन बोलना, शत्रु दमन, सत्य भाषण और अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में हो ही नहीं सकते। आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में हो ही नहीं सकते। मूर्ख मनुष्य विद्वान को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है, क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा, और गुणवानों का बल है क्षमा। वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना गया है, किंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों के द्वारा कही जाए तो अनर्थ का कारण हो सकती है। बाणों से बींधा हुआ, फरसे से कटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव ये हृदय में कभी नहीं भरता। करणी, नालीक और नारास नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकलता, क्योंकि वह हृदय के भीतर ऐसा धंस जाता है और उसकी हर समय ऐसी रड़क चलती है, निकलता ही नहीं। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर भयंकर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनकी वाणी का प्रयोग न करें। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। बार बार सुनते विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये महाभारत का ही है। फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की यह बुद्धि नष्ट हो गई। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? विदुर जी। किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। किस समय सुना रहे हैं? रात में। क्यों सुना रहे हैं? कि उसको नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो रहा है। कल क्या कहेंगे धृतराष्ट्र के, ये युधिष्ठिर के वचन संजय क्या सुनाएंगे, घबराहट हो गई। महाराज धृतराष्ट्र जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों में सबसे बढ़कर है। धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया सौम्य भाव तथा आपके लिहाज के कारण इतने वर्षों तक कष्ट सहन कर रहा है, इसके ऊपर आप गंभीर विचार कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मेरा हृदय इस समय तुम्हारे शीतल वचनों से थोड़ा थोड़ा शांति को प्राप्त करता है, पर अभी मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तुम तो मुझे अपनी अमृतमय वाणी से तृप्त करने में लगे रहो और मुझसे कुछ मत पूछो। विदुर जी फिर बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है। और विशेषता से बात पूछे तो कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है, जितना तीर्थों में स्नान करने का नहीं है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक को जाएंगे। पुरुषश्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूं, जिसमें केशनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर सुनाओ, तुम जो सुनाओगे उसी के लिए मैंने तुमको आमंत्रित किया है, सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, विदुर जी ने कहा, राजन एक समय की बात है, केशनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। ये विरोचन प्रहलाद का पुत्र। तब वहां केशनी ने दैत्यराज विरोचन से इस प्रकार बातचीत की। केशनी बोली, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य हैं? बोलो, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? तुम तो दैत्य हो, तुम्हारे साथ कैसे करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतान हैं, अतः सबसे उत्तम है। ये सारा संसार हम लोगों का है, हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज होते हैं? केशिनी बोली, विरोचन इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें, कल प्रातःकाल सुधन्वा यहां आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी, उसके बाद विचार करूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरु प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र उसके बाद जब रात बीती सूर्यमंडल का उदय हुआ उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशनी के साथ मौजूद था। भरत श्रेष्ठ सुधन्वा प्रह्लाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रह्लाद नंदन मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू देता हूं, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। जबकि एक समान नहीं, मैं ब्राह्मण हूं तुम दैत्य हो। विरोचन ने कहा, सुधन्वन तुम्हारे लिए तो पीढ़ा चटाई या कुश का आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर स्वर्ण के सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हो? बैठने के योग्य नहीं हो। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं, दो ब्राह्मण दो क्षत्रिय दो वृद्ध दो वैश्य दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रह्लाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं, तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना गौ घोड़ा आदि धन है उसकी मैं बाजी लगाता हूं, हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय में जानकार हो उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन क्यों सुवर्ण गाय और घोड़े की बाजी लगाते हो? हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर ये जान कर ले, उनसे पूछो जो जानकार हो उनसे पूछो। विरोचन ने कहा, अच्छा प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहां चलेंगे? मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूं, न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूं, किससे कराओगे? सुधन्वा बोला, देखो प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास प्रह्लाद जी के पास जाएंगे, मुझे विश्वास है प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, महाराज इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय गए जहां प्रहलाद जी बैठे थे। प्रहलाद ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखकर मनी मन में सोचा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, जो एक दूसरे से अलग रहते थे, वे दोनों सुधन्वा विरोचन एक साथ आ रहे हैं, परंतु इनके चेहरे पर तो क्रुद्ध वे सांप के समान लंबी लंबी सांसें निकल रही हैं, कोई विशेष परिस्थिति होगी। उनके पास आने पर प्रहलाद जी ने विरोचन से कहा, विरोचन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई? यदि हो गई तो बड़े आनंद की बात। एक साथ कैसे रहे हो, कैसे आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ पूछता हूं, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर मत दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको पहले सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ, इनके चरण धो, इनका सत्कार करो। फिर प्रहलाद ने सुधन्वा से कहा, हे ब्राह्मण तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिए सफेद गऊ खूब मोटी ताजी अर्पित कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूं उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन, इतना ही उत्तर चाहता हूं। प्रहलाद बोले, हे सुधन्वा जी मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य निष्पक्ष निर्णय कैसे देगा और उस निर्णय पर तुमको कैसे विश्वास हो जाएगा? सुधन्वा बोला, हे मतिमान तुम्हारे पास गऊ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में जो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना हो मैं वो उत्तर लेकर आदर को प्राप्त होऊंगा। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन अब मैं तुमसे ये बात पूछता हूं, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे उस दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सच तो बोले नहीं और निर्णय स्पष्ट करे नहीं, उसकी क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, सौत वाली स्त्री जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की राहत में जो स्थिति है वही स्थिति उल्टा न्याय करने वाले वक्ता की होती है। सौत वाली स्त्री की क्या दशा होती है, जुए में हारे हुए जुआरी की क्या दशा होती है, सारे दिन पलदारी करी उठा उठार बोरिया नाकी खांड की भारी भारी रात में सोए न मेरी काई दशा हुए, ऐसी दशा उल्टा न्याय देने वाले की होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूखा कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं से देखा जाता है, ये वो राजा है जिसने झूठ बोला, ये वो राजा है, ये वो राजा है, ऐसे लोग उसको बोलते हैं। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गऊ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां और मनुष्य मरता हो तो 21,000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ बोलने वाला अपना सर्वनाश कर लेता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ मत बोलना प्रह्लाद, क्योंकि केशनी है, उसके ऊपर हम दोनों का विचार है। प्रह्लाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा के सामने हार गए। कौन बोलते हैं? प्रह्लाद। किसको बोले? अपने बेटे को, तुम हार गए। विरोचन अब तुम विरोचन अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों के मालिक हैं। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूं। प्राण दे दो, मैं विरोचन को पाना चाहता हूं। सुधन्वा बोला, प्रह्लाद, तुमने धर्म को स्वीकार किया, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। प्रह्लाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हें दे दिया, तुम्हें दे दिया, किंतु एक काम करना होगा। क्या? अब यह है, कुमारी केशनी के पास जाल चलकर मेरा पैर धोए। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोले, बेटे के स्वार्थ व सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं, प्रह्लाद से शिक्षा लें। प्रह्लाद के सत्य ने अपने बेटे को जीवित कर दिया। तुम लोग चरवाहों, देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते हैं, वे जिसकी रक्षा करते हैं उसकी उत्तम बुद्धि से युक्त रक्षा करते हैं। लोग देखते हैं देवता तो कोई चरवाहों के समान डंडा लेकर रक्षा करते, नहीं, बुद्धि से रक्षा करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे ही उसके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़िया के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसको छोड़कर चले जाते हैं। शराब पीना, कलह करना, समूह के साथ बैर करना, पति और पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्यागने योग्य बातें हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को किसी भी प्रकार से गवाह न बनाए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं। देखो, ये जो बताए ना कि इनको क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये लोग जब गवाह देते हैं जो बात होती है वो बात बोलते हैं, तो अपने वचनों से डगमग न होने के कारण से गवाह में आपत्ति आ सकती है, इसलिए ये गवाह नहीं बनाने चाहिए। किसी हीनता को लेकर नहीं कहा है, वाणी की स्पष्टता को लेकर कहा है। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्री गामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह कौं कौं करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति के रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करके भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की पहचान होती है, व्यवहार से साधु की पहचान होती है, भय आने पर शूरवीर की पहचान होती है, आर्थिक कठिनाई में धीर की पहचान होती है, कठिन आपत्ति में शत्रु की पहचान होती है और मित्र की भी पहचान होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को, काम लज्जा को, अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमाती है, संयम से सुरक्षित रहती है। आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत नहीं बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर अधिक हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वो एक ही गुण राज सम्मान सभी मनुष्यों के गुणों से बढ़कर होता है। मनुष्य लोक में आठ अवगुण स्वर्ग का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से चार तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और चार का स्वयं सज्जन उनके पीछे पीछे चलते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये चार सज्जनों के पीछे चलते हैं। इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता और कोमलता, इन चारों का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, क्षमा, दया, अलोभ, ये धर्म के आठ प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले चारों का तो दंभ के लिए ही सेवन किया जाता है, परंतु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह नहीं सकते हैं। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वो सभा सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वो बूढ़े नहीं। बूढ़ा कौन है जो धर्म की बात कहे? सभा कौन सी अच्छी जिसमें बड़े बूढ़े रहते हों? जिसमें सत्य नहीं वो धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वो सत्य नहीं। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये दस स्वर्ग के साधन हैं। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को प्राप्त होता है, और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य फल की ओर भागता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य पाप करता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वो मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को जाता है। मनुष्य को चाहिए कि सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वो पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति में समर्थ हो जाते हैं। दिन भर में वो कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे, और आठ महीने वो कार्य करे जिससे वर्ष के चार महीने सुख से व्यतीत करे। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रहे, और जीवन भर वो कार्य करे जिससे मरने के बाद सुख से रहे। सज्जन पुरुष पथ जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर सूरवीर की, और तत्वज्ञान प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न नया दोष प्रकट होता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाला शिष्यों का शासक गुरु है, दुष्टों का शासक राजा है, और छिपे हुए पाप करने वालों के शासक सूर्य पुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जाता कि ये कहां से आए। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। हे महाभारत, बुद्धि से विचार करके किए वे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबल से किया जाने वाला कर्म मध्यम श्रेणी का होता है, भार ढोने का काम महाअधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहेंगे? मगरमच्छ के ऊपर बैठकर समुद्र को कैसे पार करोगे? हे भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आपने पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं, और आपने उनके साथ क्या किया है और आपके मन में क्या बर्ताव है, ये तो आप अपने दिल ही से पूछिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मुझे और ऐसी अमृतमयी वाणी सुनाओ। अब विदुर जी आगे कल चौथे अध्याय से फिर ये बात कहेंगे। ये विदुर नीति का प्रसंग है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।